بسم اللہ الرحمن الرحیم، یہ ریڈیو تہران ہے، اسلامی گنراج ایران کی آواز۔
ریڈیو تہران کے سبھی شروتا، زہرا زیدی اور ساتھیوں کا سلام سویکار کریں۔ شروتا مترو، آج آپ سورہ مائدہ کی آیت کرمانک 65، 66 اور 67 کی تلاوت اور انواد سنیں گے۔ تلاوت کا شرح پراپت کیا ہے قاری صدیق منشاوی نے۔
اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحيم،
ولو أن أهل الكتاب آمنوا واتقوا لكفرنا عنهم سيئاتهم ولا أدخلناهم جنات النعيم، ولو أنهم أقاموا التوراة والإنجيل وما أكلوا من فوقهم ومن تحت أرجلهم منهم أمة مقتصدة وكثير منهم ما يعملون، يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك فما بلغت رسالته والله يعصمك من الناس إن الله لا يهدي القوم الكافرين.
صدق الله العظيم۔
اللہ کے نام سے جو اتہن کرپاشیل اور دیاوان ہے، اور یدی آسمانی کتاب والے ایمان لے آتے اور ایشور سے ڈرتے تو ہم ان کے پاپوں کو کشما کر دیتے اور انہیں انکمپاؤں کے باغوں میں پروشت کر دیتے، اور یدی وے توریت، انجیل اور جو کچھ ان کے پالنہار کی اور سے ان پر اتارا گیا تھا سب کو قائم کرتے، ارثات ان پر کارے بدھ رہتے، تو نسندے وے اپنے اوپر اور پیروں کے نیچے سے ایشوریے ویبھوتیاں پرابت کرتے۔ उनमें से एक गुट मध्यमार्गी है, परंतु अधिकांश लोग बुरे कर्म करते हैं। हे पैगंबर, आपके पालनहार की ओर से जो आदेश आप पर उतारा गया है उसे लोगों तक पहुंचा दीजिए, और यदि आपने ऐसा न किया तो मानो आपने उसके संदेश को पहुंचाया ही नहीं। और जान लीजिए कि ईश्वर आपको लोगों से सुरक्षित रखेगा, निसंदेह ईश्वर काफिरों का मार्गदर्शन नहीं करता।
ये रेडियो तेहरान की हिंदी सेवा है। श्रोताओ, हमारा ये प्रसारण आप शॉर्टवेव में 31 मीटर बैंड बराबर 9620 किलोहर्ट्ज पर सुन रहे हैं। आज शनिवार है, बहमन की 15, रजब की 13 और फरवरी की 4 तारीख। इस सभा में प्रसारित होने वाले कार्यक्रम इस प्रकार हैं। सबसे पहले आप सुनेंगे विश्व समाचार, उसके बाद राजनीतिक चर्चा, उसके बाद हम आपको स्वतंत्रता प्रभात विशेष कार्यक्रम सुनवाएंगे और अंतिम कार्यक्रम होगा अच्छी आदतें। दोस्तों, ताज़ा और विस्तृत खबरों के लिए आप हमारी वेबसाइट देखते रहिए। वेबसाइट का पता है parstoday.ir/hi। अब आप सैयद मीसम से विश्व समाचार सुनिए। सबसे पहले आज के मुख्य समाचारों का सारांश। हजरत अली अलैहिस्सलाम के शुभ जन्म दिवस पर आज पूरे ईरान में जश्न का माहौल है। जज ने आरोपों से बरी करते हुए कहा है कि पुलिस ने शर्जील इमाम और सफूरा जरगर को बलि का बकरा बनाया है। फिलिस्तीनियों के संबंध में नेतन्याहू की नीतियों को लेकर उनके मंत्री ने उन्हें धमकी दी है। गुल्ला का कहना है कि लेबनान का वर्तमान संकट अमेरिका की देन है। आप विस्तार से विश्व समाचार सुनिए। हजरत अली अलैहिस्सलाम के शुभ जन्म दिवस के अवसर पर आज पूरे ईरान में खुशियां मनाई जा रही हैं। शनिवार 4 फरवरी 2023 को 13 रजब है। आज पूरे ईरान में हजरत अली के जन्म दिवस पर कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। पूरे देश के पवित्र स्थलों, महत्वपूर्ण सड़कों और घरों, इमारतों और दुकानों को सजाया गया है। इस अवसर पर लोग बढ़ चढ़कर उत्सवों में भाग ले रहे हैं। बहुत से स्थानों पर मिठाइयां बांटी जा रही हैं। कवि और वक्ता हजरत अली अलैहिस्सलाम का गुणगान करते हुए कविताएं और शेर पढ़ रहे हैं। ईरान के धार्मिक नगरों मशहद और कुम का वातावरण अधिक धार्मिक दिखाई दे रहा है। लोग एक दूसरे को बधाइयां दे रहे हैं। वहां पर पवित्र स्थलों पर जाकर लोग हजरत अली के प्रति अपनी श्रद्धा पेश कर रहे हैं। ईरान में हजरत अली अलैहिस्सलाम के शुभ जन्म दिवस से संबंधित कार्यक्रम कल रात से आरंभ हो चुके हैं, जो आज अपने चरम पर हैं। मस्जिदों, इमामबाड़ों और महापुरुषों की मज़ारों पर विशेष कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। कल रात से जारी ये सिलसिला आज पूरे दिन जारी रहेगा। हजरत अली अलैहिस्सलाम के शुभ जन्म दिवस के अवसर पर हम सबकी सेवा में हार्दिक बधाई पेश करते हैं। ईरान के विदेश मंत्री ने वेनेजुएला के राष्ट्रपति से मुलाकात की है। हुसैन अमीर अब्दुल्लायान ने शुक्रवार की सुबह वेनेजुएला के राष्ट्रपति निकोलस मादुरो से मुलाकात की। یہ ملاقات وینزویلا کی راجدھانی کاراکاس میں ہوئی. دونوں نیتاؤں نے اس ملاقات میں دیپکشیہ سمبندوں میں وستار، پرسپر سہکاریتا اور انتراشٹری مدوں پر وچار ومرش کیا. وینزویلا کے راشٹرپتی سے ملاقات سے پہلے ایران کے ودیش منتری نے وینزویلا کے اپراشٹرپتی، ودیش منتری اور پیٹرولیم منتریوں سے الگ الگ ملاقاتیں کیں. حسین امیر عبداللہیان گروار کو ایک ششٹ منڈل کے ساتھ کاراکاس پہنچے تھے. ایران اور وینزویلا کے سمبندھ بہت پرانے ہیں. 1960 کے دشک سے دونوں دیشوں کے بیچ تیل کے کھیتر میں سہیوگ آرم ہوا تھا. ورتمان سمے میں ایران اور وینزویلا دونوں ہی امریکہ کے غیر قانونی پرتبندوں کا دنش. اس کے علاوہ بہو پکشواد کی رکشا، امریکہ کی ایک پکشیہ ایوم ہستکشیپورن کاروائیوں کا مقابلہ، شانتیپورن لکشیوں کے لیے پرمانو ارجا کے پریوگ اور فلسطینی جنتا کے ادھیکاروں کو مانیتا دینے جیسے مدوں پر دونوں ہی دیشوں کے سمان درشٹیکوڑ پائے جاتے ہیں. امریکہ نے ایران کے ڈرون کاریکرم کے ورودھ نئے پرتیبندھ لگائے ہیں. ایرنا کی رپورٹ کے انوسار ایران کے ڈرون ویمانوں کے بھے سے امریکی وت منترالے نے گروار کو ایران کے ڈرون کاریکرم پر حملہ بولتے ہوئے نئے پرتیبندھوں کی گھوشنا کی ہے. امریکہ کے وت منترالے کی اور سے گھوشنا کی گئی ہے کہ اس منترالے کے ودیشی سمپتی نینترن کاریالے نے ایران کی پرور پارس نامک کمپنی کے 8 سینئر مینیجروں کو پرتیبندھت کر دیا ہے. واستو میں امریکہ کے وت منترالے نے ایران کی پرور پارس کمپنی کے انہی 8 ادھیکاریوں پر پرتیبندھ لگایا ہے جن کو اس سے پہلے شاہد ڈرون بنانے کے دعوے کے ساتھ پرتیبندھت کیا گیا تھا. حالیہ کارروائی سے پہلے امریکی وت منترالے نے 31 جنوری کو یہ دعویٰ کیا تھا کہ یوکرین میں روس دوارا پریوگ کیے جانے والے ڈرون کے نرمان کے کارن ایران کی 7 کمپنیوں پر آرتھک درشٹی سے روک لگائی جا رہی ہے. امریکی وت منترالے کے گھوشنا پتر میں یہ دعویٰ بھی کیا گیا تھا کہ یوکرین کے ورودھ پریوگ کرنے کے لیے ایران کے ڈرون روس استھانانترت ہو رہے ہیں. یہ کام امریکہ کی راشٹرپتی سرکشا اور ودیش نیتی کے ہتوں کے وپریت ہے. الیکھنیہ ہے کہ امریکہ کے نیتتو میں پشچم مہینوں سے یہ ایران ورودھی دعویٰ کر رہا ہے جسے تہران نے کڑائی سے رد کر دیا ہے. جامعہ ہنسا کیس میں دلی کی ایک عدالت نے اسٹوڈنٹ ایکٹیوسٹ شرجیل امام، آصف اقبال تنہا اور انے 9 لوگوں کو بری کر دیا ہے. ایڈیشنل سیشن جج ارون ورما نے 2019 میں جامعہ نگر پولیس اسٹیشن میں درج ایک معاملے میں شنیوار کو ان دونوں کو بری کرنے کا فیصلہ سنایا. فیصلہ سناتے ہوئے جج ورما نے ٹپنی کرتے ہوئے کہا کہ وہ اسہمتی جتانے والوں اور دنگائیوں کے بیچ کی ریکھا کو دھندلا نہیں کر سکتے. عدالت نے جامعہ کے نزدیک ہوئی ہنسا کے معاملے میں فیصلہ سناتے ہوئے کہا، اس معاملے میں دائر مکھ چارج شیٹ اور 3 پورک چارج شیٹ کو دیکھنے کے بعد جو تتھیہ ہمارے سامنے لائے گئے ہیں ان سے عدالت اس نتیجے پر پہنچی ہے کہ پولیس اصلی اپرادھیوں کو پکڑنے میں ناکام رہی ہے، لیکن ان لوگوں کو بلی کے بکرے کے طور پر گرفتار کرنے میں کامیاب رہی. عدالت نے سبھی 11 لوگوں کو آروپ مکت کرتے ہوئے پولیس کے کام کرنے کے طریقے پر کڑی ٹپنی کی ہے. فیصلہ سناتے ہوئے جج ارون ورما نے کہا، پولیس ہنسا کے اصلی سازش کرتاؤں کو پکڑنے میں ناکام رہی ہے. اس کے بجائے اس نے امام، تنہا اور سفورا زرگر کو بلی کا بکرا بنا دیا. اس طرح کی پولیس کارروائیوں سے ایسے ناگرکوں کی آزادی کو چوٹ پہنچتی ہے جو اپنے مولک ادھیکاروں کا استعمال کرتے ہوئے شانتی پورن پردرشن کرتے ہیں. حالانکہ عدالت کے اس آدیش کے باوجود شرجیل امام جیل میں ہی رہیں گے کیونکہ ان کے خلاف سال 2020 میں اتر پوروی دلی میں ہوئے دنگوں کی سازش میں شامل ہونے کا آروپ ہے اور ان کے خلاف اس معاملے میں مقدمہ چل رہا ہے. دراصل 2019 میں ویوادت ناگرک سنشودھن قانون CAA اور NRC کے خلاف علی گڑھ مسلم یونیورسٹی میں ہوئے ایک ورودھ پردرشن میں تتھا کتھت بھڑکاؤ بھاشن کے بعد ان کے خلاف مقدموں کی جھڑی لگ گئی تھی. میڈیا رپورٹس کے مطابق شرجیل کے خلاف علی گڑھ پولیس نے دیش دروہ اور دنگا بھڑکانے کی دھاراؤں کے تحت مقدمہ درج کیا تھا. असम और दिल्ली में भी इसी तरह की FIR दर्ज की गई थी। CAA और NRC के खिलाफ देश भर में धरना प्रदर्शनों के दौरान शर्जील का एक वीडियो वायरल हुआ था। इस वीडियो में शर्जील कहते हैं कि अगर हमें असम के लोगों की मदद करनी है तो उसे भारत से कट करना होगा। पाकिस्तान ने ऑनलाइन इंसाइक्लोपीडिया विकिपीडिया को अपने यहां ब्लॉक कर दिया है। पाकिस्तान की सरकार का कहना है कि आपत्तिजनक और ईश निंदा से जुड़े कंटेंट को हटाने से इनकार के बाद ऑनलाइन इंसाइक्लोपीडिया के खिलाफ ये कार्रवाई की गई है। प्राप्त रिपोर्ट के मुताबिक पाकिस्तान टेलीकॉम अथॉरिटी ने विकिपीडिया की सेवाओं को इससे पहले भी 48 घंटों के लिए बैन कर दिया था और सामग्री हटाने को लेकर चेतावनी दी थी। पाकिस्तान टेलीकॉम अथॉरिटी के प्रवक्ता ने विकिपीडिया को देश में ब्लॉक करने की पुष्टि की है। पाकिस्तान की एक अदालत के निर्देश के अनुसार पाकिस्तान टेलीकॉम अथॉरिटी ने विकिपीडिया पर ईश निंदा से जुड़े कंटेंट मिलने के बाद बुधवार को 48 घंटों के लिए उसकी सेवाओं को लोगों की रीच से बाहर कर दिया था और इसी के साथ स्थायी रूप से प्रतिबंध की चेतावनी दी थी। विकिपीडिया एक ऑनलाइन इंसाइक्लोपीडिया है, क्षमा कीजिएगा, विकिपीडिया एक ऑनलाइन इंसाइक्लोपीडिया है। इसे दुनिया भर के वॉलंटियर्स ने बनाया है और वे ही इसे संपादित करने का काम भी करते हैं। विकिपीडिया फाउंडेशन इसे चलाने में मदद करता है। इसराइल की राष्ट्रीय सुरक्षा के मंत्री ने धमकी दी है कि अगर प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू फिलिस्तीनियों को लेकर अपनी नीति में बदलाव नहीं करेंगे तो वो अपने पद से इस्तीफा दे देंगे। शनिवार को प्राप्त रिपोर्ट के मुताबिक ज़ायोनी शासन की राष्ट्रीय सुरक्षा के मंत्री इतामार बिन गोयर ने फिलिस्तीनियों के संबंध में नेतन्याहू की नीतियों की आलोचना करते हुए कहा कि वो गजा पट्टी में फिलिस्तीनी प्रतिरोधी संगठनों का मुकाबला करने के लिए गंभीर नहीं हैं। इसके अलावा गोयर ने वेस्ट बैंक में अल खान अल अहमर के इलाके को खाली कराने में विलंब को लेकर भी नेतन्याहू की आलोचना की। कट्टर दक्षिणपंथी ज़ायोनी मंत्री ने धमकी देते हुए कहा कि अगले 8 महीनों में अगर इन मुद्दों को लेकर कोई गंभीरता नहीं दिखाई गई तो वो अपने पद से इस्तीफा दे देंगे। इसराइल की राष्ट्रीय सुरक्षा के मंत्री ने फिलिस्तीनियों के घरों को जब्त करने, पूर्वी बैतुल मुकद्दस में उनके घरों को ध्वस्त करने और ज़ायोनी नागरिकों को हथियार देने जैसे मुद्दों को लेकर भी नेतन्याहू सरकार पर दबाव डालने की बात कही है। लेबनान में हिजबुल्ला गठबंधन के प्रमुख ने कहा है कि अमेरिका ने इस्लामी प्रतिरोधी संगठन को कमजोर करने के मकसद से देश में संकट उत्पन्न किया है। मिशेल ऑन के 6 साल के राष्ट्रपति काल की समाप्ति के बाद उनके उत्तराधिकारी के चयन के लिए लेबनान के सांसदों ने कई बार कोशिश की लेकिन वे हर बार विफल रहे, जिसके बाद देश में राजनीतिक संकट के गहराने के बारे में चिंता जताई जा रही है। शनिवार को अल अहद वेबसाइट की रिपोर्ट के मुताबिक लेबनानी संसद में वफादारी नामक गठबंधन के प्रमुख मोहम्मद रात का कहना है, हमारे दुश्मनों का प्रयास है कि लेबनान में राष्ट्रपति पद को लेकर संकट उत्पन्न कर दें ताकि इस पद पर वे अपना पिट्ठू बैठा सकें जो उनकी नीतियों को लागू कर सके और देश और इलाके में इस्लामी प्रतिरोध को कमजोर करने में उनके साथ सहयोग करे। उन्होंने कहा कि प्रतिरोध के दुश्मनों ने लेबनान के पैसों और बैंकों पर कब्जा कर लिया है और प्रतिबंधों और नाकाबंदी के जरिए वे लेबनान पर हावी होना चाहते हैं। उन्होंने देश को बंधक बनाकर रखा हुआ है लेकिन हमें विश्वास है कि लोग इस संघर्ष में हमारे साथ हैं और आखिरकार जीत हमारी ही होगी। हाल ही में हिजबुल्ला के एक वरिष्ठ अधिकारी ने अली दामोश ने भी कहा था कि अगर अभी भी कुछ लोग ये मानते हैं कि लेबनान संकट के समाधान के लिए दूसरे देशों विशेष रूप से अमेरिका पर भरोसा किया जा सकता है तो वे बहुत बड़ी गलती कर रहे हैं। तुर्की के गृह मंत्री ने अपने देश के आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप को लेकर अमेरिका को कड़ी चेतावनी दी है। सुलेमान सुइलू ने तुर्की में मौजूद अमरीकी राजदूत को संबोधित करते हुए कहा कि तुर्की में आने वाले अमरीकी राजदूत इस देश को हमेशा नुकसान पहुंचाने के लिए काम करते हैं। उन्होंने कहा कि ये काम पिछले कई वर्षों से चल रहा है। इसी के साथ रेडियो तेहरान से विश्व समाचार समाप्त हुए।
ये रेडियो तेहरान की हिंदी सेवा है।
राजनीतिक चर्चा।
श्रोताओं, आपका स्वागत है कार्यक्रम राजनीतिक चर्चा में। राजनीतिक चर्चा में हम जायजा लेंगे इसराइली अधिकारियों के विदेशी दौरों का। राजनीतिक चर्चा में हम एक नजर डालेंगे यूरोपीय संघ की संसद में भ्रष्टाचार के मुद्दे पर। भारत नियंत्रित कश्मीर में प्रशासन ने इनक्रोचमेंट के खिलाफ एक ड्राइव शुरू की है, इस पर भी एक रिपोर्ट आपको सुनवाएंगे। तो चर्चा के विषय यही है। आरंभ करते हैं इसराइली अधिकारियों के विदेशी दौरों से। इसराइल के प्रधानमंत्री और विदेश मंत्री फ्रांस और सूडान की यात्रा पर गए हैं। इन यात्राओं का उद्देश्य और कारण क्या है, जायजा ले रहे हैं कायम रिजवी।
ज़ायोनी शासन के प्रधानमंत्री और विदेश मंत्री ने फ्रांस तथा सूडान का दौरा ऐसे हालात में किया है कि बिन्यामिन नेतन्याहू की सरकार पर भारी आंतरिक दबाव है। नेतन्याहू के फ्रांस दौरे के मौके पर ज़ायोनी विदेश मंत्री एली कोहेन ने सूडान की यात्रा की। नेतन्याहू 2 फरवरी को 3 दिवसीय दौरे पर फ्रांस गए, जबकि कोहेन खारतूम पहुंचे। ये दौरे ऐसे हालात में हो रहे हैं कि जब नेतन्याहू के विरोधियों ने हर शनिवार को बड़े पैमाने पर प्रदर्शनों का अभियान चला रखा है। हालात ऐसे हैं कि नेतन्याहू की सरकार गिर जाने की संभावना लगातार बनी हुई है। नेतन्याहू का फ्रांस दौरा मुख्य रूप से ईरान विरोधी लक्ष्यों पर काम करने और फिलिस्तीनियों के साथ जारी झड़पों के मसले पर चर्चा के लिए है। पिछले एक महीने में फिलिस्तीनियों के साथ इसराइल का तनाव बहुत बढ़ गया है। फिलिस्तीनियों ने इसराइली सेना की बर्बरता का जवाब देते हुए ज़ायोनी बस्तियों के निवासियों को निशाना बनाया, जिसके नतीजे में 10 ज़ायोनी मारे गए। इन हालात में इसराइल ने ईरान के इस्फहान नगर में रक्षा मंत्रालय की फैक्ट्री पर ड्रोन हमला करके ये दिखाने की कोशिश की है कि उसे ज्यादा नुकसान ईरान की वजह से हो रहा है। इसमें तो कोई शक नहीं है कि यूरोपीय देश, विशेष रूप से फ्रांस, ज़ायोनी शासन के मुख्य समर्थकों में से एक है। एलिजे पैलेस में नेतन्याहू और फ्रांसीसी राष्ट्रपति इमैनुएल मैक्रा की मुलाकात में ईरान के खिलाफ खूब बयानबाजी हुई। फ्रांस के राष्ट्रपति ने उन्हीं के शब्दों में ईरान के तेज रफ्तार परमाणु कार्यक्रम की आलोचना की और कहा कि ईरान की तरफ से इस प्रक्रिया के जारी रहने के जरूर कुछ नतीजे हैं। नेतन्याहू ने मशवरा दिया कि ईरान के खिलाफ अधिक कठोर प्रतिबंध लगाए जाएं और ईरान की पासदाराने इनकलाफ फोर्स को आतंकी संगठनों की सूची में शामिल कर लिया जाए। नेतन्याहू पिछले 15 सालों से ज़ायोनी शासन के प्रधानमंत्री के रूप में काम करते रहे हैं। वे हमेशा इसी नुस्खे को आजमाते रहे हैं कि जब भी आंतरिक समस्याएं गंभीर रूप धारण कर लें तो ईरान के खिलाफ और फिलिस्तीनी संगठनों के विरुद्ध नए आरोप शुरू कर दिए जाए ताकि आंतरिक दबाव में कुछ कमी आ जाए।
यूरोपीय संघ की संसद में भ्रष्टाचार का मुद्दा व्यापक रूप से उठा है। जायजा ले रहे हैं सैयद मीसा।
यूरोपीय संसद ने गत गुरुवार को दो सांसदों की इम्यूनिटी समाप्त कर दी जिन पर रिश्वतखोरी का आरोप है। इसके बाद इन दोनों सांसदों से पूछताछ के लिए बेल्जियम की जांच एजेंसियों को छूट मिल गई है। संसद ने बहुमत से बेल्जियम के सांसद मार्क ताराबेला और इटली के सांसद आंद्रिया काजोलिनो की इम्यूनिटी समाप्त करने की मंजूरी दे दी। दोनों सांसदों ने कहा था कि वे बेल्जियम की जांच एजेंसियों के साथ सहयोग के लिए तैयार हैं। दोनों सांसदों का कहना है कि रिश्वतखोरी आरोप गलत हैं। दोनों पर आरोप है कि कतर और मोरक्को के अधिकारियों ने उन्हें रिश्वत देकर यूरोपीय संघ की संसद के निर्णय लेने की प्रक्रिया को प्रभावित करने की कोशिश की। ताराबेला पर आरोप है कि उन्होंने संसद की निर्णय प्रक्रिया को प्रभावित करने के बदले 1,20,000 से लेकर 1,40,000 यूरो तक की रकम कई बार वसूल की है। ताराबेला और कोलिना का संबंध सोशलिस्ट पार्टी और डेमोक्रेटिक पार्टी से है जो यूरोपीय संघ की संसद में बड़े धड़ों में गिने जाते हैं और दोनों पार्टियों को इस आरोप से काफी नुकसान पहुंचा है। यूरोपीय संघ की संसद हमेशा मानवाधिकार और कानून के प्रभुत्व जैसे मुद्दों पर आदर्शवादी बातें करती है मगर अब रिश्वतखोरी का मामला सामने आने के बाद बड़ी मुसीबत में पड़ गई है। ये मामला प्रकाश में आया है कि कतर और मोरक्को ने इस सदन के उपसभापति सहित कुछ सांसदों को रिश्वत खिलाकर उससे अपने हितों के अनुकूल फैसले करवा लिए। यूरोपीय संसद और उसके कुछ धड़े जो हमेशा भ्रष्टाचार के खिलाफ बहुत सख्त नजर आते थे अब खुद ही भ्रष्टाचार के मामले में शक के दायरे में आ गए हैं। रिन्यू यूरोप पार्टी के नेता स्टीफन सेजोरने ने संसद में कहा है कि इस भ्रष्टाचार से यूरोप के बारे में बुरी सोच फैलेगी और इसकी रोकथाम का यही तरीका है कि तत्काल सुधार किया जाए। स्पेन के पूर्व प्रधानमंत्री और यूरोपीय कमीशन के पूर्व सलाहकार अरानका गोजालेंस का कहना है कि इस भ्रष्टाचार ने यूरोपीय संसद की मान्यता को भी बट्टा लगा दिया है। यूरोपीय प्रेस सिक्योरिटी ने कहा है कि कतर ने अपने यहां स्टेडियमों के निर्माण में काम करने वाले मजदूरों के अधिकारों को लेकर यूरोपीय संसद में की जा रही आलोचना को कम करने के उद्देश्य से सांसदों को रिश्वत दी मगर दोहा ने इन आरोपों का खंडन किया है। इसी तरह मोरक्को के बारे में कहा जाता है कि उसने मछली के शिकार के अधिकार के मामले में और पश्चिमी सहारा इलाके पर इस देश की संप्रभुता को मान्यता दिए जाने के मसले में यूरोपीय सांसदों को रिश्वत देकर लॉबिंग की। यूरोपीय संघ की संसद के पूर्व सदस्य पी एर एंटोनियो पांजेरी ने जो 2004 से 2019 तक इस संसद में थे स्वीकार किया है कि कतर और मोरक्को के मामले में उन्होंने सदन के निर्णय को प्रभावित करने के लिए एक धड़े को लीड किया। पुलिस का कहना है कि इसके बदले में उन्हें कम से कम 10 लाख यूरो की रकम मिली है। प्रोसिक्यूटरों का कहना है कि इस सांसद ने कतर से इस काम के लिए पैसे लिए कि फुटबॉल विश्व कप शुरू होने से पहले मानवाधिकार के मसले में कतर की छवि को बेहतर बनाकर पेश करें। नवंबर के महीने में यूरोपीय संसद ने मानवाधिकार के मसले में कतर के बारे में एक प्रस्ताव पास किया था। उसी समय आवा काइली ने इस प्रस्ताव पर कड़ी आपत्ति की जो इससे पहले तक कतर में स्टेडियमों और होटलों के निर्माण के दौरान मजदूरों की मौत के मसले पर कतर की आलोचना किया करते थे। कहा जाता है कि यूरोपीय संसद ने अपने निर्णयों की प्रक्रिया में बुनियादी बदलाव करने का फैसला किया है। एक महीने पहले 14 सुधार पटल पर रखे गए हैं जो यूरोपीय संसद को साफ करने की प्रक्रिया का पहला कदम है। ये प्रस्ताव संसद सभापति रॉबर्टा मेटसोला के जरिए पेश किए गए हैं जिन पर आरोप है कि उन्होंने मोरक्को के 3 अधिकारियों से 142 तोहफे प्राप्त किए हैं। इससे पता चलता है कि यूरोपीय संसद में भ्रष्टाचार के पहलू बहुत व्यापक हैं। सुधारों के बाद यूरोपीय संसद के 705 सदस्यों के लिए जरूरी हो जाएगा कि वे अपनी हर मुलाकात की मुकम्मल रिपोर्ट सदन के पटल पर रखें। इसके साथ ही सांसदों की अन्य देशों के अधिकारियों से हर तरह की दोस्ती पर रोक लगा दी जाएगी। इसके साथ ही कुछ सांसदों की ये मांग है कि जो भी सांसद कोई दूसरी जॉब कर रहा है उस पर भी नजर रखी जाए।
भारत नियंत्रित कश्मीर में प्रशासन ने इंक्रोचमेंट के खिलाफ एक ड्राइव शुरू की है जिस पर अलग अलग राय सामने आ रही है। ब्यूरो के साथ हमारे संवाददाता सिप्त मोहम्मद हसन।
जम्मू कश्मीर यूटी के एलजी मनोज सिन्हा ने कहा है कि जो इंक्रोचमेंट ड्राइव जम्मू कश्मीर प्रशासन ने आरंभ की है उसमें आम लोगों को निशाना नहीं बनाया जाएगा। जम्मू में एक सरकारी सभा को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि यहाँ के इन्फ्लुएंशियल लोगों ने सरकारी जमीनें हड़प ली हैं और उनसे वो वापस ली जा रही है, इसका आम लोगों के साथ कोई लेना देना नहीं है। उन्होंने कहा कि जो हमने ड्राइव आरंभ की है, मेरा ये विश्वास है कि जम्मू कश्मीर के लोग इसे एक अच्छा कदम मानते हैं और वो इसकी प्रशासना भी कर रहे हैं।
कई लोग कोशिश कर रहे हैं, पहले कोशिश की गई उन लोगों के द्वारा जो रसूखदार लोग थे, जिन्होंने नियमों की अवहेलना करके अपने पदों का दुरुपयोग करके सरकारी संपत्ति अपने अपने रिश्तेदार अपने परिवार के नाम करी, तो उन्होंने एक माहौल बनाने का काम किया कि साहब ये 2,00,000 लोगों को बेघर करने जा रहा है जम्मू कश्मीर प्रशासन।
अगर मनोज सिन्हा ने यह दावा किया है कि इससे आम लोग प्रभावित नहीं होंगे, परंतु जम्मू कश्मीर के विभिन्न क्षेत्रों में इस ड्राइव के द्वारा जो स्थिति पैदा हुई है वो गंभीर है। एलजी ने अगर बार बार ये कहा है कि आम लोग प्रभावित नहीं होंगे, परंतु जम्मू से लेकर कश्मीर के विभिन्न क्षेत्रों में आम लोग इससे प्रभावित हो रहे हैं। लोगों में काफी ज्यादा आक्रोश भी है और गमोगुस्सा भी है, परंतु बार बार प्रशासन की तरफ से ऐसे वक्तव्य तो आ रहे हैं, जमीनी सतह पर इसका कोई भी जवाब नजर नहीं आ रहा है, क्योंकि जमीनी सतह पर जहां इन्फ्लुएंशियल लोगों की जमीनें उनसे वापस ली जा रही है, वहीं पर आम लोगों को भी निशाना बनाया जा रहा है। विभिन्न क्षेत्रों में लोगों ने इसके विरुद्ध में जोरदार प्रदर्शन भी किए हैं। दक्षिणी कश्मीर के शोपियां में लोगों की एक बड़ी संख्या ने इस ड्राइव के विरोध में प्रदर्शन भी किया और धरना भी दे दिया। इस बीच एक बार फिर जम्मू कश्मीर के राजनीतिक दलों ने कहा है कि ये जो ड्राइव आरंभ कर रखी है इसका राजनीतिक लाभ उठाने का भरपूर प्रयास हो रहा है, परंतु जम्मू कश्मीर के लोग ये सब जानते हैं। जम्मू कश्मीर गुपकार अलायंस में शामिल दलों ने कहा है कि वो इसके विरोध में नहीं है कि सरकारी जमीन अगर किसी ने हड़प ली है तो उसे वापस ली जाए, परंतु जिस तरह से राजनेताओं को निशाना बनाया जा रहा है और उसमें झूठ का सहारा लिया जा रहा है वो उनके लिए दर्द का बाइस बना हुआ है। मुजफ्फर शाह जो अवामी नेशनल कॉन्फ्रेंस के अध्यक्ष हैं ने कहा है कि उनके विरोध में जो एनक्रोचमेंट ड्राइव आरम्भ कर दी गई है उसका जमीनी स्तर से कोई लेना देना नहीं है, क्योंकि ये जो प्रॉपर्टी है वो 1835 ईस्वी में उनके पुरखों ने हासिल की है, लेकिन आज हमें राजनीतिक द्वारा निशाना बनाने के लिए इस पर हमला हो रहा है। उन्होंने कहा कि वो सुप्रीम कोर्ट में इसका चैलेंज करेंगे। सिप्त मोहम्मद हसन, रेडियो तेहरान, श्रीनगर।
और इसी के साथ राजनीतिक चर्चा का कार्यक्रम समाप्त होता है।
ये प्रसारण आप रेडियो तेहरान की हिंदी सेवा से सुन रहे हैं। प्रस्तुत है अगला एक विशेष कार्यक्रम।
स्वतंत्रता प्रभात।
दोस्तों, ईरान की इस्लामी क्रांति की महान सफलता की 44वीं वर्षगांठ के मौके पर पेश किए जाने वाले विशेष कार्यक्रम की एक अन्य कड़ी के साथ आपकी सेवा में हाजिर हैं रविश जैदी और मरियम महदादी का सलाम स्वीकार कीजिए।
ईरान की इस्लामी क्रांति की सफलता को 44 साल बीत रहे हैं, लेकिन आज भी ये क्रांति क्षेत्रीय व अंतर्राष्ट्रीय राजनीतिक समीकरणों में ध्यान का केंद्र बनी हुई है। कम ही ऐसा होता है कि कोई पीड़ित राष्ट्र क्रांति के लिए साहस करे, और जो राष्ट्र आंदोलन और क्रांति के लिए कदम बढ़ाते भी हैं तो कम ही ऐसा देखा गया है कि उन्होंने उसे अंजाम तक पहुँचाया हो। और सरकारों के बदलने के अलावा क्रांति के आदर्शों और महत्वाकांक्षाओं की हिफाजत की हो, लेकिन ईरान की साहसी जनता की शानदार क्रांति जो वर्तमान की सबसे लोकप्रिय क्रांतियों में से एक है, एकमात्र ऐसी क्रांति है जो 44 वर्ष बीत जाने के बाद भी अपने आदर्शों को सुरक्षित रखे हुए है। इस्लामिक क्रांति के सर्वोच्च नेता आयतुल्लाह उज़्मा सैयद अली खामनेई ने स्पष्ट रूप से कहते हैं कि ईरान के लोगों की क्रांति अंतिम मुक्तिदाता हजरत मेहदी अलैहिस्सलाम के परचम तले इस्लामी दुनिया की महान क्रांति का प्रारंभिक बिंदु है। अल्लाह वर्तमान युग में उनका जुहूर अर्थात प्रकट करके सभी मुसलमानों और दुनिया को आशीर्वाद दे।
इन दिनों ईरान के इस्लामी गणराज्य में दहे फज्र अर्थात स्वतंत्रता प्रभात के कार्यक्रमों का आयोजन किया जाता है। स्वतंत्रता प्रभात ईरानी कैलेंडर के 11वें महीने बहमन की 12 से 22 और ईसवी महीने फरवरी की 1 से 11 फरवरी तक है। इन्हीं तारीख में 14 वर्षों के निर्वासन और देश निकाले के बाद स्वर्गीय इमाम खुमैनी रहमतुल्लाह अलैह पूरे सम्मान और गौरव के साथ स्वदेश वापस लौटे थे और ईरान की जनता को इस्लामी क्रांति की सफलता की महान सौगात मिली थी। वैसे तो देखने में 1979 की ईरान में आई क्रांति दुनिया की महान क्रांतियों के समान ही थी, लेकिन अन्य क्रांतियों से इसका मूलभूत अंतर इसकी धार्मिक जड़ों और धार्मिक नेतृत्व के साथ साथ ईश्वर केंद्रितता में था।
ईरान की मुस्लिम जनता अपने वरिष्ठ धर्मगुरुओं को इमाम मेहदी अलैहिस्सलाम का एक प्रकार का प्रतिनिधि मानती है। दूसरे शब्दों में, जैसा कि वे इमाम मेहदी के प्रकट होने पर उनके लिए आज्ञाकारिता को अनिवार्य मानती है, वे ये भी जानती है कि उनकी गैबत अर्थात अनुपस्थिति के दौरान उनके सामान्य प्रतिनिधि के आदेशों का पालन करना अनिवार्य है। इस्लामी क्रांति की सफलता के बाद मर्जे तकलीद का शीर्षक बदल कर वली फकीह कर दिया गया। इसीलिए वली फकीह वही मर्ज तकलीद होता है कि जिसके ऊपर समाज और समुदाय के नेतृत्व की जिम्मेदारी होती है। साथ ही इमाम मेहदी के प्रतिनिधि होने के कारण लोगों ने इस संरक्षकता को स्वीकार किया है। दूसरे शब्दों में, जहां क्रांति से पहले लोग मर्ज तकलीद के आदेश के अनुसार संघर्ष कर रहे थे, तो वहीं क्रांति के बाद भी लोग वली फकीह के आदेश के मुताबिक अहंकार और अत्याचार के खिलाफ लड़ रहे हैं।
पूरे मानव इतिहास में महामुक्तिदाता के आने का विषय मौजूद है। इस शुभ सूचना की ओर बड़े व महान ईश्वरीय पैगंबरों ने व्यापक स्तर पर संकेत किया है। सिद्धांतिक रूप से अंतिम मोक्षदाता के प्रकट होने का विश्वास रखना वो विषय है जिसे यहूदी, पारसी और ईसाई और विशेषकर ईश्वरीय धर्म इस्लाम में एक मूल सिद्धांत के रूप में माना गया है। पवित्र कुरान की कुछ आयतों में स्पष्ट रूप से कहा गया है कि इस बात की शुभ सूचना पूर्व के पैगंबरों की किताबों में भी दी गई है। महान ईश्वर पवित्र कुरान के सूरह अंबिया की 105वीं आयत में कहता है, और हमने जबूर में जिक्र के बाद लिख दिया है कि जमीन के उत्तराधिकारी हमारे भले बंदे ही बनेंगे। ये आयत ऐसे विषय के बारे में शुभ सूचना देती है जिसमें हर प्रकार की बुराई पूर्ण रूप से मानव समाज से मिट जाएगी और जमीन के उत्तराधिकारी भले व योग बंदे बनेंगे।
हजरत दाऊद पर उतरी आसमानी किताब जबूर में बारंबार इस बात की शुभ सूचना दी गई है और हजरत दाऊद को ढारस बंधाती है कि बुरे लोगों से दुखी न हो, क्योंकि घास की भांति शीघ्र ही उन्हें काट लिया जाएगा। ईश्वर पर भरोसा करो और उसके अस्तित्व से आनंद उठाओ, क्योंकि बुरे लोगों का अंत हो जाएगा और ईश्वर पर भरोसा करने वाले ही जमीन के उत्तराधिकारी होंगे। पारसियों की धार्मिक पुस्तक जन में भी अन्याय व अत्याचार के समाप्त होने तथा भले बंदों के जमीन का उत्तराधिकारी होने की ओर संकेत किया गया है। इसी प्रकार ये किताब अच्छाई और बुराई के बीच सदैव लड़ाई जारी रहने की ओर संकेत करती और बल देकर कहती है कि उद्दंडी व अत्याचारी लोगों के गुट समाप्त होने के बाद संसार के अपने मूल कल्याण व सफलता तक पहुँचा जाएगा और आदम की संतान भलाई के सिंहासन पर बैठेगी।
हिंदू धर्म की पुस्तकों में भी मुक्ति दिलाने वाले का उल्लेख मिलता है। महाभारत में आया है, समस्त धर्मों का मानना है कि इतिहास के हर कालखंड की समाप्ति पर मनुष्य का आध्यात्मिक एवं नैतिक दृष्टि से पतन हो जाएगा, और चूंकि स्वाभाविक रूप से उसका पतन हो रहा है तथा वो ब्रह्मांड की रचना करने वाले से दूर रहा हो रहा है, इसलिए वो स्वयं इस पतन को नहीं रोक सकता। तो अंततः एक दिन आध्यात्मिक दृष्टि से ऐसा महान व्यक्ति प्रकट होगा जिसका सृष्टि की रचयिता से संपर्क होगा और संसार को अज्ञानता, अचेतना और अन्याय के अंधकार से मुक्ति दिलाएगा। यहूदी धर्म के लोग भी, जो स्वयं को ईश्वरीय दूत हजरत मूसा का अनुयायी समझते हैं, मुक्तिदाता की प्रतीक्षा में हैं। यहूदी धर्म की धार्मिक रचनाओं, तौरात और उनके दूसरे पैगंबरों की किताबों में मुक्तिदाता के आने की ओर बारंबार संकेत किया गया है। इंजील मत्ता, लूका, मरकस, बरनाबा और योहन्ना जैसी ईसाइयों की पवित्र पुस्तकों में भी अंतिम समय में प्रकट होने वाले मुक्तिदाता के बारे में बहुत अधिक संकेत किया गया है।
दोस्तों, ईरान की इस्लामी क्रांति ने अपने अनूठे उदय के साथ एक लंबे ऐतिहासिक पिछड़ेपन और पतन को समाप्त कर दिया। ईरान जो पहलवी और काजार शासनकालों में बहुत ज़्यादा पिछड़ा हुआ और अपमानित था, क्रांति के बाद प्रगति के पथ पर अग्रसर हो गया। ईरानी जनता ने अपनी इच्छा शक्ति और दृढ़ संकल्प से कुख्यात पहलवी शासन का पतन कर दिया, जिसके बाद चौतरफा और वास्तविक प्रगति के लिए रास्ता साफ हो गया और युवाओं को मैदान में उतरकर अपनी क्षमताओं के प्रदर्शन का मौका मिला। ईरान और विश्व के लोगों के लिए इस्लामी क्रांति का एक बहुत बड़ा उपहार धार्मिक शिक्षाओं के आधार पर एक व्यवस्था का गठन था। स्वर्गीय इमाम खुमैनी बल देकर कहते थे कि इस्लाम में केवल उपासना और नैतिक शिक्षाएं नहीं हैं, बल्कि इस्लाम की महत्वपूर्ण शिक्षाओं का भाग सामाजिक संबंधों और सरकार के संचालन के संबंध में है। इस संबंध में वे कहते हैं, दुआ और जियारत इस्लाम का एक भाग है, परंतु इस्लाम के पास राजनीति है, इस्लाम सरकार का संचालन करता है और इस्लाम आध्यात्मिक धर्म होने से पहले राजनीति का धर्म है।
विश्व की दूसरी क्रांतियों से ईरान की इस्लामी क्रांति की एक विभिन्नता व विशेषता अध्यात्म की ओर रुझान है। ईरानी जनता का प्रतिरोध व आंदोलन ईश्वर के लिए था और वो इस्लाम की उच्च एवं मानवता का निर्माण करने वाली शिक्षाओं के आधार पर अस्तित्व में आया। ईरान की इस्लामी क्रांति के संस्थापक स्वर्गीय इमाम खुमैनी सद्गुणों से सुसज्जित एक धार्मिक नेता थे और वो ईश्वरीय आदेशों के पालन को क्रांति की सफलता और लोक परलोक के कल्याण का कारण मानते थे। ईरान की इस्लामी क्रांति में अध्यात्म की ओर रुझान की बात उस समय की जा रही थी जब चारों ओर भौतिकवाद और धर्म से दूरी का प्रचार किया जाता था और ये विषय राष्ट्रों के लिए रोचक व ध्यान योग्य था। इसी कारण इस क्रांति के समर्थक केवल मुसलमान नहीं बल्कि बहुत से गैर मुसलमान भी इसके समर्थक हैं। ये वे लोग हैं जो धर्म को समाप्त करने और भौतिकवाद पर ध्यान दिए जाने पर आधारित पश्चिम के प्रयास से अप्रसन्न हैं और वे महान ईश्वर जैसे संतुष्ट व विश्वस्त भरोसे की खोज में हैं, ताकि वे उसकी शरण में आध्यात्मिक शांति प्राप्त कर सकें। इस आधार पर ईरान की इस्लामी क्रांति इस दृष्टि से भी मुसलमानों और गैर मुसलमानों के मध प्रभावी रही है कि वो धर्म और अध्यात्म का निमंत्रण देने वाली है।
दोस्तों, कार्यक्रम के अंत में दाए फज्र अर्थात स्वतंत्रता प्रभात के 10 दिनों, जिसे ईश्वर के 10 दिन भी कहा जाता है, उसकी बधाई देते हुए हम आपको याद दिलाते हैं कि फज्र का अर्थ है अंधेरे से निकलकर उजाले की ओर आना है। یہ ایسی روشنی کو کہتے ہیں جو اندھیرے کے ساتھ ساتھ اتیاچار کو بھی ختم کر دیتی ہے۔ سنسار کے انتم مکتی داتا حضرت امام مہدی کے ظہور ارتھات پرکٹ ہونے کا بھی یہی ارتھ ہے۔ وہ سبھی طرح کے اندھیروں کو اپنے پرکاش سے مٹا دیتے ہیں اور ظلم سے بھری دنیا کو مکتی دلائیں گے۔ دوسرے شبدوں میں ایران کی اسلامی کرانتی نے پرکاش کا ایک ایسا وسفوٹ کیا جو دنیا کے لوگوں کے لیے شبھ سوچنا لے کر آیا ہے۔ اب ایسے سبھی لوگ اور وشیش کر مسلمان جو اپنے ادھیکاروں کی پراپتی کی پرتیکشا کر رہے ہیں، ان کا کرتویہ ہے کہ وہ اس کرانتی کو بنائے رکھیں اور اس کے مادھیم سے جلد سنسار کے انتم مکتی داتا کے پرکٹ ہونے کا احساس کریں، جیسا کہ اللہ پوتر قرآن کے سورہ القصص کی 5ویں آیت میں کہتا ہے، اور ہمارا یہی ارادہ ہے کہ ان لوگوں پر اپکار کریں جنہیں دھرتی میں کمزور بنا دیا گیا تھا اور انہیں اگوا بنائے جو انہی کو دھرتی کا اترادھیکاری بنایا ہے۔
تو دوستوں، کاریکرم کا سمے ہی سماپت ہوتا ہے، ہمیں اجازت دیجیے، خدا حافظ۔
یہ پرسارن آپ ریڈیو تہران کی ہندی سیوا سے سن رہے ہیں۔ اب پرستت ہے اگلا کاریکرم، اچھی عادتیں۔ اچھی عادتیں،
دوستو کارکرم اچھی عادتیں کی ایک انیہ کڑی کے ساتھ آپ کی سیوا میں اپستھت ہیں۔ مریم مہر دادی اور سید مسم کا سلام سویکار کیجیے۔
کارکرم کی پچھلی کڑی میں ہم نے الیکھ کیا تھا کہ کبھی کبھی صحیح طور سے زندگی گزارنے کے لیے ہمیں اپنے لائف اسٹائل میں بدلاؤ کرنا پڑتا ہے اور بری عادتوں کو تیاگ کر اچھی عادتوں کو اپنانا پڑتا ہے۔ ہم نے یہ بھی الیکھ کیا تھا کہ سفلتا حاصل کرنے کا سب سے پہلا سدھانت انوشاسن اور ڈسپلن ہے۔ انوشاسن سیکھا جا سکتا ہے اور پریکٹس سے اس میں نکھار لایا جا سکتا ہے۔ انوشاسن کے لیے پلاننگ اور صحیح سمے پر کام انجام دینے کی ضرورت ہوتی ہے۔
بچپن میں ہی اچھی عادتیں سکھانا اور بری عادتوں سے دور رکھنا ماتا پتا کا کرتویہ ہوتا ہے، اور اس کے بعد اسکول میں یہ ادھیاپکوں کی ذمہ داری ہوتی ہے۔ بچوں میں انوشاسن لانے کے لیے غصے اور دھمکی سے بچنا چاہیے۔ اسلامی پرمپراؤں میں کروت کی بہت نندہ کی گئی ہے اور اسے سبھی برائیوں کی جڑ قرار دیا گیا ہے۔ جب آپ اپنے بچوں میں انوشاسن پیدا کرنے کے لیے نیم بناتے ہیں تو ان نیموں کو لاگو کرنے میں دڑھتا سے کام لینا چاہیے اور جھجک اور کشمکش سے بچنا چاہیے۔ اچھی عادتیں اپنانے کے لیے سمے کی آوشکتا ہوتی ہے اور یہ ترنت یا ایک بار میں سمبھو نہیں ہے۔
واسطوں میں یہ انسان کے ارد گرد کا واتاوارن ہوتا ہے جو اپروکش یا پروکش روپ سے اس کے مارگ درشن یا بھٹکنے کے لیے بھومی پرشست کرتا ہے۔ اس کے باوجود سویتنتا پوروک نرنے لینے کی اچھا انسان میں کبھی نہیں مرتی اور چین کی آزادی کا ادھیکار ہمیشہ اس میں زندہ رہتا ہے۔ اس سندر میں پیغمبر اسلام فرماتے ہیں کہ ہر بچہ سوستھ دیویا پرکرتی کے ساتھ جنم لیتا ہے، لیکن یہ ماں باپ ہوتے ہیں کہ جو اپنی غلط پرورش سے اسے سیدھے راستے سے بھٹکا دیتے ہیں۔
دوستو، بھوتک آوشکتاؤں کے علاوہ بچوں کے آدھیاتمک ضرورتوں کی آپورتی یعنی انہیں سنسکارت بنانا اور اچھی عادتیں سکھانا ماں باپ کا کرتویہ ہے۔ ماتا پتا دوارا اپنے بچوں کے صحیح لالن پالن اور ان کی دیکھ بھال کے ساتھ ساتھ ویکتیگت پاریوارک ساماجک دھارمک اور سانسکرتک ملوں کا استھانانترن ہی ان کی صحیح پرورش ہے۔
माँ बाप की जिम्मेदारी है कि खुद भी सही संस्कारों का पालन करके और व्यवहारिक रूप से बच्चों के लिए आदर्श पेश करके उन्हें उनके पालन के लिए प्रेरित करें और उन्हें स्वीकार करने के लिए भूमि प्रशस्त करें, क्योंकि अगर वे ऐसा नहीं करेंगे तो उनकी ये पाक साफ प्रकृति धीरे धीरे धूमिल और दूषित होती चली जाएगी। शिशु और बच्चे अपने आसपास के लोगों के आचरण से प्रभावित होते हैं। अब वे माँ बाप हों, रिश्तेदार हों, क्लास के साथी हों, शिक्षक हों, खिलाड़ी हों या धार्मिक, राजनीतिक एवं सामाजिक हस्तियां, सभी हमारे बच्चों पर प्रभाव डालते हैं और उनके लिए एक आदर्श पेश करते हैं। हालांकि इन सबके बीच माँ बाप की भूमिका सबसे महत्वपूर्ण होती है।
इस परिप्रेक्ष्य में कहा जा सकता है कि जिस प्रकार बच्चों के सही मार्गदर्शन और उनकी सही परवरिश के लिए भूमि प्रशस्त होती है, उसी प्रकार उनके भटकने और सीधे रास्ते से भ्रमित होने की भी संभावना अधिक होती है। बच्चों का मन साफ और दिल कोमल होता है और जीवन का अनुभव न होने के कारण उनके भटकने की संभावना भी अधिक होती है। इसलिए माँ बाप की जिम्मेदारी होती है कि वे उनके सफल जीवन के रास्ते में आने वाली रुकावटों को हटाएं और उनके पवित्र मन और कोमल दिल को अनैतिक एवं सामाजिक बुराइयों में लिप्त होने से सुरक्षित रखें।
एक बुरी आदत जो न सिर्फ बच्चों पर बल्कि बड़ों पर भी नकारात्मक असर डालती है, वो है बच्चों की एक दूसरे से तुलना करना या खुद की दूसरों से तुलना करना। इस आदत के तहत इंसान दूसरों को या खुद को नापसंद करने लगता है और फिर उसमें अहंकार या निराशा पैदा होने लगती है। हालांकि ऐसा नहीं है कि तुलना करना सिरे से गलत है, बल्कि कुछ अवसरों पर इसके सकारात्मक और उत्साहजनक परिणाम होते हैं। इसलिए कहा जाता है कि तुलना सार्थक होनी चाहिए और इसमें नकारात्मक पहलू शामिल नहीं होना चाहिए।
हालांकि अक्सर लोग इस बात की तुलना करते हैं कि उनके पास क्या है और क्या नहीं है जो दूसरों के पास है। उदाहरण स्वरूप, लोग अपने स्टेटस और धन दौलत की दूसरों से तुलना करते हैं। इससे हो सकता है कि आपको आगे बढ़ने और अधिक प्रयास करने का प्रोत्साहन मिले, लेकिन ये चीज़ जब आदत बन जाती है तो इंसान से संतुष्टि छीन लेती है और फिर उसमें अंतहीन लाभ और लालच पैदा हो जाता है। खुद से मोहब्बत करना आत्मज्ञान की ओर पहला कदम है। इंसान इससे तुलना की अवांछनीय आदत या भावना को समाप्त कर सकता है।
खुद की दूसरों से तुलना के कई कारण हो सकते हैं, जिनमें से कुछ इस प्रकार हैं। आत्मविश्वास का अभाव दूसरों से खुद की तुलना का एक मुख्य कारण है। जब लोग खुद को सही से नहीं पहचानते हैं और उनमें आत्मविश्वास की कमी होती है तो स्वाभाविक रूप से वे दूसरों से खुद की तुलना करने लगते हैं। वे ये देखना चाहते हैं कि उनमें क्या कमी है कि जो वे दूसरों की तरह सफल या खुशहाल नहीं हैं। ऐसे लोग अक्सर अपने जीवन में असफल होते हैं और मौजूदा परिस्थितियों के अनुकूल अपने लिए सही रास्ते या चीज़ों का चयन नहीं करने के कारण नाकाम हो जाते हैं और हमेशा इस बात का रोना रोते हैं कि दूसरे लोग उनसे बेहतर और सफल जीवन व्यतीत कर रहे हैं।
अगर आप अपनी क्षमताओं के बारे में सोचे बिना सिर्फ अपनी कमियों को सोचकर परेशान होते हैं तो आप गलत रास्ते पर जा रहे हैं। यह आपकी एक कमजोरी हो सकती है, यहाँ तक कि यह आपको अपने जीवन के कुछ अनमोल पहलुओं को आनंद लेने से भी रोक देती है। दूसरे लोगों के साथ निरंतर की जा रही तुलना आपके आत्मसम्मान को कम कर देती है और इससे आपको अपने ही बारे में बुरा लगने लगता है। दूसरों से तुलना करने से हमारे मन में दूसरों के प्रति जलन और ईर्ष्या पैदा होने लगती है और हमारे अंदर निराशा बढ़ने लगती है। जब हम अपनी तुलना दूसरों से करते हैं तो हमारे व्यक्तित्व का विकास बाधित हो जाता है। उदाहरण स्वरूप, जब हम अपनी तुलना किसी अमीर आदमी से करते हैं तो हमें अपने गरीब होने का एहसास होता है। इसी तरह जब हम अपनी तुलना किसी गरीब आदमी से करते हैं तो हमें अपनी अमीरी का घमंड पैदा होता है। बच्चों के बीच तुलना करने से उनमें हीन भावना पैदा होती है और उनका मानसिक विकास प्रभावित होता है।
انسان اگر خود کی تلنا خود سے کرنا سیکھ جائے تو وہ دوسروں سے تلنا کرنے سے سوئم کو بچا سکتا ہے۔ خود سے تلنا کرنے پر اپنی کمیاں اور خامیاں سدھارنے کا افسر ملتا ہے۔ ہم سبھی میں کچھ نہ کچھ وشیشتائیں ہوتی ہیں، جیسے کہ مچھلی کو تیرنا آتا ہے اور پرندوں کو اڑنا آتا ہے۔ ہماری جو جو وشیشتائیں ہیں ہمیں انہیں ابھارنا چاہیے، اور جو عادتیں اچھی ہیں ہمیں ان سے سیکھنا چاہیے۔ خود سے زیادہ سفل لوگوں سے پریرنا لینا چاہیے، لیکن تلنا کرنا اچھی عادت نہیں ہے۔
دوسروں سے خود کی تلنا کرنے کا سب سے بڑا نقصان ورتمان جیون اور سمے کو کھونا اور اس کا آنند نہیں لینا ہے۔ اس کے علاوہ اس سے لوگوں کے شاریرک اور مانسک سواستھ پر برا اثر پڑتا ہے۔ اس سے چھٹکارا پانے کے لیے سب سے پہلے ہمیں اپنا لکش نردھارن کرنا چاہیے۔ جب آپ اپنے لکش نردھارت کرتے ہیں تو آپ لکش کی اور کس طرح سے آگے بڑھ رہے ہیں یہ جاننے کے لیے اپنی پرگتی کا آنکلن کرتے رہیں۔ اس سے آپ کو دوسرے لوگوں کی جگہ خود پر دھیان دینے میں مدد ملے گی۔ اگر آپ کو ایسا لگتا ہے کہ آپ کو کچھ کھیتروں میں سدھار لانے کی ضرورت ہے تو ایسا کریں، اور اس کے لیے اگر پرشکشن کی یا کسی کی مدد کی ضرورت ہو تو اس کے لیے قدم آگے بڑھائیں۔ اس سے آپ کا آتم وشواس بڑھے گا۔ دوسروں کے بجائے اپنی تلنا خود اپنے آپ سے کریں۔ اپنے آپ کو نکھارنے کے لیے نرنتر پریاس کرتے رہیں۔ اس طرح سے آپ خود ہی اپنے لیے ترقی کے راستے کھولتے جائیں گے اور خود سے ہی پریرنا حاصل کرتے جائیں گے۔ جب آپ اپنی سفلتا کی کسوٹی کا استعمال اپنی ترقی میں کرتے ہیں تو آپ دوسروں سے اپنی تلنا کرنا بند کر دیتے ہیں۔ یہ پرکریا آپ کو دوسروں کے ساتھ جس مقابلے کو محسوس کر رہے ہیں اسے آپ سے بہت دور کر دے گی۔ تو دوستو، کاریکرم کا سمے یہیں پر سماپت ہوتا ہے۔ انومتی دیجیے۔
شروتاؤ، یہ پرسارن آپ ریڈیو تہران کی ہندی سیوا سے سن رہے ہیں۔ تازہ اور وستھت خبروں کے لیے آپ ہماری ویب سائٹ دیکھتے رہیے۔ ویب سائٹ کا پتہ ہے parstoday.ir/hi۔ ہمارا ای میل آئی ڈی ہے hindi@ws.irib.ir۔ اسی کے ساتھ ہمیں اجازت دیجیے۔ خدا حافظ। Thank you.